हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। हालांकि सिद्धार्थ को ये लग रहा था, ये मामूली सी लड़की आखिरकार उस पर हाथ कैसे उठा सकती है। वहीं कंबल में लिपटी हुई झलक को तो यही लग रहा था कि ये सिद्धार्थ एक नंबर का घटिया और अय्याश इंसान है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। तभी सिद्धार्थ ने उसकी ओर देखकर कहा, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। अब झलक ने गहरी लंबी सांस ली। वैसे भी जो वो चाहता था वो तो वो उसके साथ कर ही चुका था, और वो बोली, मैं ये आज की घटना कभी भी नहीं भूल सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे अस्पताल में जो मेरे पिता का इलाज हो रहा है उसका खर्चा माफ़ हो जाए। क्योंकि सिद्धार्थ का जो हॉस्पिटल था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस और बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, जिसका मालिक खुराना परिवार था। हालांकि पहले उसके पिता का इलाज उसके ओबेरॉय हॉस्पिटल में हो रहा था, लेकिन अब जब से उर्वशी जी ने उसके पिता को अपने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, तब से उनका खुराना परिवार के अस्पताल में ही उनका इलाज हो रहा था, जहां पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े डॉक्टर जो कि विदेशों से आए थे वो वहाँ मौजूद थे और उसका इलाज कर रहे थे। क्योंकि अब कहीं ना कहीं झलक को इस बात का भी डर था, झलक को इस बात की भी संतुष्टि थी, अगर खुराना परिवार के हॉस्पिटल में उसके पिता का इलाज होगा तो कभी भी ओबेरॉय परिवार उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेगा, और वैसे भी उनके हॉस्पिटल की काफ़ी ज़्यादा महंगी फ़ीस थी। हालांकि कुछ दिनों के लिए उर्वशी जी ने महंगी फ़ीस को भर दिया था, लेकिन उसके बाद उर्वशी जी से वो ज़्यादा फेवर नहीं ले सकती थी, उसे अपने पिता की फ़ीस को खुद ही संभालना था। वेल, अब झलक की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ में अपनी लेफ्ट आईब्रो उठाई, उसके होठों पर एक दुष्ट और मक्कारी भरी मुस्कुराहट थी, और फिर वो उसकी ओर देखकर बोला, अगर तुम मेरे साथ ठीक से व्यवहार करोगी तो मैं हॉस्पिटल का सारा खर्चा माफ़ करवा दूंगा। अब जैसे ही सिद्धार्थ ने ये कहा, झलक केवल उसे देखते रह गई थी। तब तक सिद्धार्थ उठ खड़ा हुआ और वहाँ से बाहर जाने लगा था। पहले उसने अपने आप को थोड़ा सा क्लीन किया और साथ ही साथ उसने दरवाजे पर खड़े हुए देव को निर्देश दिया कि जाकर कपड़े लेकर आओ, और साथ ही साथ नाइट शेड क्लब से शीतल अपार्टमेंट तक, जहां झलक रहा करती थी, उस बिल्डिंग का नाम शीतल अपार्टमेंट था। तब उसने देव से बोला, नाइट क्लब से और सीधा उसके घर के रास्ते तक अगर झलक अपने लिए गर्भ निरोधक दवाई खरीदती है तो उसे विटामिन में बदल दो। तब देव हैरान हो रहा था कि आखिरकार उसके बॉस को हो क्या गया है। उसका बॉस चाहता तो एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां उसके बॉस के बेड पर आ सकती थी, लेकिन बॉस को ये बदसूरत से दिखने वाली लड़की ही क्यों पसंद आई। लेकिन फिलहाल उसने अपने बॉस से कह दिया था, ठीक है बॉस, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। वेल, जल्दी ही अब जैसे तैसे झलक ने खुद को संभाला। दूसरी बार सिद्धार्थ उसके साथ इंटीमेट हुआ था तो उसका पूरा शरीर इस वक्त दर्द कर रहा था। फिलहाल वो उठी, फटाफट से उसने खुद को क्लीन किया। आज लकीली उसने अपने पूरे शरीर पर विदेशी क्रीम अप्लाई की थी, जिससे उसका खूबसूरत बदन सिद्धार्थ को दिखाई नहीं दिया था। क्योंकि आकांक्षा जब से सिद्धार्थ के साथ बाहर लोगों के सामने घूमने फिरने जाया करती थी, और साथ ही साथ ये बात भी आकर झलक को बोल दी थी कि आपसे वो अपने पूरे शरीर पर उसे दवाई को अप्लाई करेगी, क्योंकि आकांक्षा के दिल में एक खौफ सा बैठ गया था। क्योंकि जब से उसे ये पता चला था कि सिद्धार्थ ने झलक के साथ एक रात गुजारी है, तो आकांक्षा ऐसा फिर ना हो तो यही चाहती थी। इसीलिए उसने अब झलक को उसके पूरे शरीर पर दवाई अप्लाई करने के लिए कह दिया था। वेल, आधी रात के बाद जल्दी ही झलक जैसे ही वहां से बाहर निकली तो रास्ते में उसे एक मेडिकल स्टोर दिखाई दिया, और वही मेडिकल स्टोर वालों को तो पहले से ही इस बात के बारे में बता दिया गया था कि अगर ये लड़की वही है जिसे गर्भ निरोधक दवाई नहीं देनी है, बल्कि उसे सिर्फ विटामिन्स की दवाइयाँ ही देनी है। अब जल्दी ही झलक वो दवाई लेने के बाद अपने घर पहुँच चुकी थी। उसकी माँ वक्त घर पर नहीं थी, वो अस्पताल में अब झलक के पिता के साथ ही रुकने लगी थी, क्योंकि उन्हें एक VIP रूम मिला हुआ था। मैसेज उर्वशी खुराना ने उनकी काफ़ी मदद की थी, और वहाँ पर उन्हें अच्छा खाने को भी मिल रहा, आराम भी मिलता था, तो इसीलिए झलक की काफ़ी टेंशन भी कम हो गई थी। तो इसीलिए बस वो आराम से घर पहुंची। घर पहुंचकर सबसे पहले उसने अपने लिए गर्म पानी का बाथटब भरा और कितनी ही देर तक उसमें बैठी रही, क्योंकि आज फिर सिद्धार्थ ने सारी हदें उसके साथ पार की थी। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सिद्धार्थ उसके साथ ऐसी कोई हरकत करेगा। झलक को उस वक्त सिद्धार्थ पर बहुत गुस्सा आ रहा था और सिद्धार्थ के लिए नफरत उसके मन में काफी ज्यादा बढ़ते जा रही थी। वेल, फिलहाल 2 से 2.5 घंटे गर्म पानी से नहाने के बाद झलक बाहर निकली थी और फिर उसने वो दवाई ले ली थी, क्योंकि इस बार वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि पिछले बार 3 दिनों तक मिसेस उर्वशी खुराना ने धोखे से उसे अपने पास रखा हुआ था, जिसकी वजह से वो आपातकालीन गर्भ निरोधक दवाइयाँ नहीं ले पाई थी। लेकिन इस बार उसने जल्दी ही वो दवाइयाँ ले ली थी। हालांकि उसे इस बात के बारे में कोई एहसास नहीं था कि जो दवाई वो ले रही है असल में वो सिर्फ और सिर्फ विटामिन के ही टैबलेट्स हैं। फिलहाल उसने वो दवाई ले ली थी और मन मन में सोच रही थी कि इस बार मैं किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लूंगी। वो सिद्धार्थ खुराना तो एक नंबर का कमीना इंसान है। वेल, अब थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करके और जी भर के सिद्धार्थ को ढेर सारी गालियां देने के बाद झलक ने अपने घर की हालत को देखा, जो कि घर काफी ज्यादा बिखरा हुआ था। झलक ने थोड़ा सा आराम करने के बाद थोड़ा घर को क्लीन करके अपने लिए बिस्तर बनाया था और फिर उस पर लेट गई थी। कुछ देर तक वो फोन में अपने दोस्तों से चैट करने लगी। प्राची और नीरज दोनों ही उसके काफी अच्छे दोस्त थे। आखिरकार झलक को इस शहर में रहते हुए काफी टाइम हो चुका था। वेल, फिर वो गहरी नींद में सो गई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग वेल झलक अगली सुबह उठी और उसने सोचा कि उसे क्यों ना आज अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ अच्छा और बढ़िया सा हेल्दी बनाया जाए। तो इसीलिए फटाफट से उसने थोड़ा सा दलिया, कुछ हरी सब्जियाँ भूनकर उन्हें लंच बॉक्स में पैक किया और एक बार फिर अपनी स्कूटी से वो उर्वशी खुराना अस्पताल में पहुँच चुकी थी। वेल जल्दी ही वो पिता के बोर्ड में जाने लगी थी, लेकिन जैसे ही वो कमरे के बाहर पहुँची तभी अंदर से उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई दी थी। झलक ने अंदर जाकर देखा तो उसकी माँ उस वक्त कोमा में लेटे हुए अपने पति के चेहरे पर थोड़ा पानी लगाकर उसे साफ कर रही थी, साथ ही साथ उनके बालों को वॉश कर रही थी। हालांकि इस काम के लिए वहाँ पर काफी सारी नर्स और स्टाफ मौजूद था, लेकिन स्नेहा जी ने डिसाइड किया था कि अपने पति सौरभ शर्मा का सारा काम वो खुद करेंगी, क्योंकि उसे वक्त कार एक्सीडेंट के बाद उसके पति कोमा में चले गए थे, तब से सारे काम उनके वही किया करते थे और अब तो 24 घंटे वो उनके साथ इस अस्पताल के कमरे में रहा करते थे। साथ ही साथ उसने देखा कि स्नेहा जी अपने पति के चेहरे को साफ करते हुए बोल रही थी, सौरभ आखिरकार आप जाग क्यों नहीं जाते हैं? क्या आपको इस तरह से बिस्तर पर लेटे रहने में मजा आ रहा है? हाँ, आपने देखा हमारी बच्ची को, हमारी झलक को किस तरह से वो हमारे लिए परेशान हो रही है। आधी रात तक वो नाइट क्लब में काम करती है, उसके बाद पार्ट टाइम में फूड डिलीवरी का काम करती है और जब भी उसे टाइम मिलता है तब वो हम दोनों के लिए खाना बनाती है और खाना लेकर अस्पताल में आती है। मेरी बेटी को तो एक दिन भी सुकून की जिंदगी जीने का मौका नहीं मिल रहा है।
आखिरकार क्यों नहीं उठ जाते हो तुम सौरभ? कब तक इस तरह से लेटे रहोगे? हाँ बोलो ना सौरभ, ये कहते हुए बार बार उनके चेहरे पर लगे पानी को पूछ रही थी। वहीं झलक की आंखें भर आई थीं अपनी माँ स्नेहा की इस तरह की बातें सुनकर। वहीं झलक के पिता तो पूरी तरह से खामोश थे, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे।